जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग रोज इस बात के लिए इकट्ठे होते हैं कि जो दिन बीत गया उस दिन से भी बेहतर क्या मेरा आज का दिन बीत सकता है। यदि ये विचार हमारे भीतर एक बार बहुत दृढ़ता से हम स्वीकार कर लें तो शायद हमारा जीवन रोज रोज अच्छा बनता चला जाए। एक दिन में ही अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले लोग अब इस भरत क्षेत्र में पैदा नहीं होते। अंतर मुहूर्त में अपना कल्याण करने वाली आत्माएं यहां जन्म नहीं लेती। हम तो वैसे लोग हैं जो वर्षों नहीं कई जिंदगियों प्रयास करके अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम रोज अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक कदम रखें, और ये प्रयास हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था जब मैं यहां आया था कि हम सब इस तरह बैठेंगे और इस तरह विचार करेंगे। मैं आपसे सच कहता हूं, मुझे खुशी है इस बात की कि सब लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लालायित तो हुए हैं। कौन अपने जीवन को कब अच्छा बना पाएगा ये तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन एक लगन यदि हमारे भीतर पैदा हो गई तो फिर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में बाधक बन सके। इस संसार में दो तरह से हम अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं। एक तो नासमझी में सिर्फ खाना पीना सोना संसार के काम करना और अपने जीवन को पूर्ण कर देना, ठीक ऐसे ही जैसे कि नदी जहां से उसका उद्गम होता है वहां से अपनी यात्रा शुरू करती है और एक दिन जाके मरुस्थल में खो जाती है। हम चाहें तो इस तरह अपने जीवन को इसी संसार में पांचों इंद्रिय के विषय और मन के विषयों की तृप्ति में खो दें, और दूसरा और जीवन जीने का ढंग है जिस पर कि हम विचार कर रहे हैं कि एक नदी जब अपने उद्गम से यात्रा शुरू करती है और समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है, उसका जीवन भी विलीन होते दिखाई पड़ता है लेकिन उसका जीवन समुद्रमय हो जाता है। वो नदी समुद्र की तरह अथाह और गंभीर और अनंत हो जाती है। हमारे जीवन की यात्रा भी अगर ऐसे ही हमारे अपने उस विशुद्ध स्वभाव में जाकर के विलीन हो जाए तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी। सारे विचार उसी यात्रा के लिए हैं। हमने पिछले दिनों बहुत सारी बातें समझी हैं, अपनी दृष्टि को निर्मल किया है, अपने ज्ञान को ठीक ठीक वस्तु स्थिति जानने के लायक बनाया है। भौतिक चीजों को जानने के लायक ज्ञान तो सबको मिला है। टोडरमल जी साहब मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि इतना शयोपशम तो हर जीव को है कि वो अपने आत्मस्वरूप को जान लेवे, लेकिन क्या करें, वो अपने इस क्षयोपशम ज्ञान का उपयोग संसार को जानने में कर देता है। थोड़ी सी दृष्टि निर्मल हो जावे तो वही क्षयोपशम अपने आत्मस्वरूप को जानने की तरफ लगने लगता है। मेरा कल्याण किसमें है इस बात को जानने में, मेरे ज्ञान को मैं लगाने लगूं तो वही तो ज्ञान समीचीन ज्ञान है। फिर मैं ऐसा आचरण अपना लूं जिससे दूसरे को कोई कष्ट ना पहुंचे। यहां से शुरू करें। जीवानम रखनो धम्मो, जीवों की मेरे द्वारा रक्षा हो, मेरे द्वारा किसी जीव को कष्ट ना पहुंचे, ऐसा जो संवेदनशील जीवन है, मैं तो सोचता हूं ऐसे मंद कषाय के साथ जो जीवन जिया जाता है उसी का नाम तो चारित्र है। ऐसे चारित्र को भी हमने समझा है और अपने जीवन में वैसा लाने का विचार भी बनाया है, लेकिन क्या करें, ये सारे विचार स्थिर नहीं रहते। इसलिए अब हम पहले ये प्रयास कर रहे हैं कि मेरे विचारों में स्थिरता आए, ताकि मैं इस रत्नत्रय को ठीक ठीक ढंग से अंगीकार कर सकूं। सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र, ये तीनों मेरे भीतर एक मेक हो जावे। मैं इसके लिए निरंतर बारह भावनाओं का चिंतन कर रहा हूं। पिछले दिनों से हम सब बैठ करके विचार कर रहे हैं, संसार को बहुत गौर से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। जो व्यक्ति इस संसार में अपनी आंख खुली रखता है, अपने अनुभव से शिक्षा लेकर के ज्ञान हासिल करता है, उसका वो ज्ञान उसके जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रहता, क्योंकि वो उधार का ज्ञान नहीं है, वो अपने सेल्फ जनरेट है, वो अपने भीतर से उत्पन्न हुआ ज्ञान। ऐसे ज्ञान को हम लोग अपने भीतर से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हो भी रहा है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि अब जब भी कोई चीज हमारे हाथ में आती है तो फौरन ख्याल आ जाता है कि कितनी तो क्षणभंगुर है और किसी भी दिन नष्ट हो जाएगी। इसके नष्ट होने पर मुझे विषाद नहीं करना चाहिए, न इसके नए रूप को देख करके मुझे और हर्ष करना चाहिए। इसकी अनित्यता का विचार, मेरे हर्ष और विषाद दोनों के बीच मुझे समता रखने का संकेत दे रहा है। यहां मैं जिन जिन के साथ रहता हूं उनसे मैं अब अपेक्षाएं नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि ये मेरा कितना साथ दे सकते हैं। इनकी अपनी सीमाएं हैं, मेरा साथ तो मेरे अपने परिणाम देते हैं, मेरा अपना धर्म देता, मेरा अपना स्वभाव देता है। मैंने इस संसार में अज्ञानता पूर्वक कैसे कैसे दुख सहे हैं, उस सब का विचार भी एक दिन हमने बैठ के कर लिया है। और हम तो सोचते थे कि ये दुख हम ही अकेले को मिले हैं इस संसार में, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं नहीं, ये संसार ही ऐसा है, इसमें जीव अपनी अज्ञानता से, सभी जीव संसार में तो वे जीव हैं भैया, संसार में जन्म मरण वे जीव कर रहे हैं जो अज्ञानी हैं, जो ज्ञानी है वो जन्म मरण नहीं करता, उसका संसार तो समाप्त हो चुका है। और फिर हमने विचार किया था कि ये जो सुख दुख मुझे इस संसार में मेरी अज्ञानता से मिलते हैं, मैं तो सोचता था कि कोई मुझे सुख देता है दुख देता है, अब समझ में आ गया कि इस सुख दुख का कर्ता भोक्ता स्वामी मैं स्वयं ही हूं। मैं अपने परिणामों से सुख और दुख को कमाता हूं, जैसे कि किसान खेत में हल जोतता है, बीज डालता है और फसल उगाता है, जैसा बीज बोता है वैसी फसल आ जाती है, ऐसे ही तो मेरे साथ भी है और मैं उसको अकेला ही करने वाला हूं। मैं यहां एकाकी हूं अपने सुख दुख का फल भोगने के लिए। और ये जो बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, जिन सबको मैं अपना मान रहा हूं, ये सब मेरे अपने भी हैं, लेकिन वास्तव में ये मेरे अपने नहीं है। मेरे अपने तो मैं मान रहा हूं और ठीक भी है, क्योंकि मुझे इनके साथ अपना जीवन बिताना है, सो मेरे अपने हैं, लेकिन एक दृष्टि और मुझे मिल गई है कि ये मेरे अपने नहीं है। मैं जब तक इनके साथ हूं सो अपना मानता हूं, लेकिन वास्तव में तो ये मेरे नहीं, ये सब मेरे से पृथक हैं। देखो मेरा स्वभाव अलग है इनका सबका स्वभाव, सबका जीव द्रव अलग अलग है। ऐसा विचार अन्यत्व का हमने किया था, फिर ये जो शरीर जिसके संपर्क में हम हैं उसका भी विचार कर लिया हमने कि रोज नहलाते धुलाते हैं, सो ठीक है, इसके नहलाने धुलाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये मेरी थोड़ी मदद कर देगा, अगर मैं चाहूं तो इसके द्वारा धर्म ध्यान कर लूंगा, बाकी जो है इसको पवित्र बनाए नहीं जा सकता, इसको इतनी पवित्र बनाए रखो जिससे कि ये बदबू ना दे, जिससे कि ये तकलीफ में ना डाले, मेरे धर्म ध्यान में सहयोगी बना रहे, बस इतना ही आवश्यक। और फिर मैंने जो है ऐसा विचार करके इस शरीर से अधिक तपस्या करने का मन बना लिया था पिछले दिनों, और फिर देखा मैंने कि अरे यहां तो जो है निरंतर मेरे अपने भावों के द्वारा राग द्वेष परिणाम के निमित्त मिलते ही साथ मैं राग द्वेष करता हूं, और जो है मेरे कर्म राग द्वेष रूप कषाय भाव से परिणत होकर के मेरे साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं, आते भी रहते हैं और बंधते रहते हैं, मैं क्या करूं। तो फिर मैंने जो बुरे विचार हैं उनको करना छोड़ दिया ताकि मेरे बुरे कर्मों का जो संचय होता था वो रुक जावे, भले कर्मों का ही संचय होवे, वे ही आवे मेरे पास। जैसे अपन चाहते कि हमारे घर में कोई बुरा आदमी न घुस जावे, हमारे यहां तो भले लोग आवे, सज्जन लोग आवे, ऐसा ही हमने विचार कर लिया है कि अब तो हमारे भीतर जो है और अच्छे ही कर्म आवे, बुरे कर्म ना आवे, क्योंकि अच्छे कर्म रहते हैं तो थोड़ी धर्म की सूझती है, और पाप का उदय आ जावे तो धर्म तक नहीं सूझता है भैया। इसलिए जो है तो पुण्य और पाप दोनों ही मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मैं ये मानता हूं, पर क्या करूं, अभी जो है पाप से बच करके मैं पुण्य का संचय इसलिए करता हूं ताकि अपने उस शुद्ध स्वरूप की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकूं, और उन पाप कर्मों को रोक देना ही तो संवर है। और जो पहले मेरी अज्ञानतावश इकट्ठे हो गए हैं बुरे कर्म, उनको मैंने निकालने का कल प्रयास भी किया था, पर इस बीच में अचानक याद आया कि ये ऐसे थोड़ी निकलेंगे, ये जो कर्म हैं ना मेरे अंदर आते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं, अब रुक गए हैं सो भी दिखाई नहीं पड़ते, और अब निकल रहे हैं सो भी दिखाई नहीं पड़ते, ये आश्रव संवर और निर्जरा तीनों सिर्फ विचार करने की चीजें हैं, पर ये दिखाई तो देती नहीं है कि कहां आश्रव हो रहा, कहां बंद हो रहा, कहां संवर हो रहा, कहां निर्जरा हो रही। मोटा उदाहरण अपन ने देखा था कि ऐसे आश्रव संवर और निर्जरा होती है। मुझे याद आता है मैंने शायद आपसे पहले भी ऐसा कहा हो कभी, शायद क्वेश्चन आंसर के टाइम में, आहार जी की बात है, सन 85 में आचार्य महाराज कार्तिक अनुप्रेक्षा पढ़ा रहे थे, हम सब लोग बैठे थे पढ़ रहे थे, मैं उस कुछ दिन पहले से मैं अस्वस्थ था तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ था, तो वचन का मैं स्वाध्याय में बैठने लगा था, पर आचार्य श्री ने कहा कि देखो ज्यादा देर नहीं बैठ पाओगे तो पीछे एक बेंच लगा लिया करे, उस पर थोड़ा सा आसरा हो जाएगा और सुना करे बैठ करके। तो एक बेंच पीछे लगा दी गई थी, उस पे पीछे हाथ टेक लेते थे कभी और बैठ जाते थे। और अचानक मेरे मन में यही प्रश्न आया कि ये आश्रव संवर और निर्जरा तो महाराज दिखती तो है नहीं है, कोई उपाय बताइएगा, क्योंकि 12 अनुप्रेक्षाएं कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी वही वर्णन चल रहा था, निर्जराधिकार चल रहा था। तो जैसे ही मैंने ऐसा प्रश्न पूछा और आचार्य श्री कहने लगे कि ठीक बैठो, सभा में ऐसे बैठा जाता टिक करके, अरे इतने आप ही ने तो कहा था, मेरे मन में आया कि आप ही ने कहा था कि टिक करके बैठ जाना, और अब इतने लोगों के बीच में, और लेकिन क्षण भर को आया कि इतने लोगों के बीच में गुरुजी तो मेरे हैं, गलती मैंने की है कह सकते हैं, इसमें बुरा लगने की क्या बात है, ये तो मेरे हित के लिए कहा है, सो ठीक ठीक बैठ गए। लेकिन 5-10 मिनट हुए और प्रवचन के दौरान ही 10 मिनट के बाद कोई प्रसंग नहीं था, बढ़िया चर्चा आचार्य श्री कर रहे थे और बीच में कहते क्यों पैर में दर्द होने लगा। अभी 10 मिनट पहले कह रहे थे कि टिक के बैठे हो, अच्छे से बैठो, और जवाब दिया नहीं था प्रश्न का, और अब पूछते हैं क्यों पैर में दर्द हो रहा। हमने कहा हाँ होगा। कहते देखो पूछ रहे थे ना कि निर्जरा कैसे होती, देखो हो रही निर्जरा हो रही, यही तो पूछा था, मुझे इसी का जवाब देना था। और वो जो मैंने तुमसे कहा कि टिक के मत बैठो सो, उसका बुरा नहीं मानना, ये तुम्हें समझ में कैसे आता? अभी थोड़ी देर पहले जब टिक के बैठे थे तो घुटने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब जब उस पर जोर पड़ा तो जो कर्म असाता बाद में उदय में आने वाला था उसकी उदीर्णा हो गई, और उदीर्णा होकर के वो अपना फल दे करके जा रहा। तो हमारी वचन का सुन रहे शांत भाव से, सो नया कर्म नहीं बन रहा, ये हो रहा संबर पूर्वक निर्जरा। देखो विचार करो, आज मुझे वो याद आ गया उदाहरण कि जब कभी अपन आश्रय संवर और निर्जरा का विचार करें तो मन में विचार तो आता है कि अनित्य का विचार करने में तो चीजें दिखती हैं कि भैया हो जा टूट गई, लेकिन ये तो समझ में नहीं आता कि ये मेरे बुरा कर्म बन गया और ये अच्छा कर्म बन गया, और ये मैंने बुरा कर्म रोक लिया और ये मैंने पुराने कर्मों की निर्जरा कर दी, पर समझ में आता है। ऐसे अपन अपने जो कर्म अपना फल देता है उस समय अपने परिणामों का विचार करके, मैं तो कहता हूं कि पूरी कर्म फिलॉसफी का अगर कोई क्लू है, अगर कोई उसका मुख्य कहना चाहिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इतना ही है कि कर्म तो सब बांधते हैं, भोगते समय जोन के जैसे परिणाम हैं वैसा ही उसका संसार है और कुछ नहीं। जो कर्मों के भोगने की टेक्निक सीख ले, जो कर्मों के भोगने की पद्धति सीख ले, वो संसार से पार हो सकता। कर्म का फल तो सब भोगते हैं, मुझे कर्म का फल भोगते समय अपने परिणाम कैसे रखना है, बस ये मेरा अपना पुरुषार्थ है। कर्म उदय में आएगा, क्रोध उदय में आएगा, मुझे क्रोध करने के लिए बाध्य करेगा, लेकिन मैं क्रोध करूं या नहीं करूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, इतनी स्वतंत्रता मेरी है। और अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि आने वाले मेहमान के साथ अगर मैं ठीक व्यवहार नहीं करूंगा तो दूसरी बार नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, जैसे संसार में समझ में आता है ऐसे यहां समझ में आ जावे कि इसी तरह मैं अपने बांधे हुए कर्मों को जब वे उदय में आवे और अपना फल देख चखने के लिए मुझे कहें तो मैं फल चखने से इनकार कर दूं, समता परिणाम रखूं, तो मैं कर्मों की निर्जरा आसानी से कर सकता हूं। नए कर्म न बांधते हुए पुराने कर्मों को और हटा देना, इसी का नाम तो संबर पूर्वक निर्जरा है। ऐसी भावना अपन ने भाई, और इस संसार में अब विचार आया कि जहां रहते हैं उसका तो विचार करे ही नहीं। हाँ जहां रहते हैं हम उसका विचार तो कर लें, हम अपने घर में रहते हैं तो ये सोचते हैं कि घर हमने बनाया है, हमारी अपनी पूरी गृहस्थी के कर्ता धर्ता हम बने फिरते हैं, जहां जाते हैं वहां कहते कि हमारा हमने ऐसा बनाया, लोगों को लेके आते हैं कि देखो हमने कितनी नई डिजाइन का घर बनाया, उसके बनाने वाले हम हैं, कारीगर ने बनवाओ भले ही बनवाओ तो हमने कारीगर ने बनाओ, मगर भाव क्या आता कि मैंने बनवाया, मेरा घर है, मेरी अपनी गृहस्थी है, मेरे अपने बाल बच्चे हैं सब मेरे, और उसका मैं स्वामी हूं, करता हूं और भोगता हूं। लेकिन मेरा घर कहां बना है? मेरा घर गंज बासौदा में बना है। गंज बासौदा कहां पर है? वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कहां पर है? वो तो भारत में है। और भारत कहां पर है? अब ऐसा विचार जब मैं करता हूं तो समझ में आता है कि ये तो बड़ा मामला लंबा चौड़ा है, मैं तो अपने इस छोटे से कमरे में ही सारा करता धरता बनाया था, इस गंज बासौदा को किसने बनाया, अरे इस मध्य प्रदेश को किसने बनाया, और इस इंडिया को किसने बनाया, और इस पूरे विश्व को जो विदित है उसको किसने बनाया, और ये विश्व भी इस पूरे लोक में कितना सा है। कहते कि अलोकाकाश और लोकाकाश का अगर कोई पूछे कि कैसा है कितना है तो कहते एक बहुत बड़े पर्दे पे एक बिंदु लगा दो सो उतने अलोकाकाश में लोकाकाश इतना सा है, एक बिंदु बराबर, और उस लोकाकाश में भी जो है ऊर्ध मध्य और अधो तीन लोक हैं, 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत हैं विन ज्ञान। ये पूरा लोक मैं तो अपने इस छोटे से घर को बनाने वाला बन के बैठ गया था और इसको किसने बनाया होगा। 14 राजू ऊंचा है ये, 7 राजू चौड़ा और 7 राजू मोटा भी है ये। इतनी विशाल जो कृति है वो किसी ने बनाई है क्या? किसी की कृति है? कोई इसका कलाकार है क्या? क्योंकि कृति है तो कृतिकार भी होगा। तो कहते नहीं, किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को। ये किसी ने ना बनाया है, ना कोई इसका विधाता ब्रह्मा है, ना कोई इसको मिटाने वाला महेश है, और ना कोई इसकी रक्षा करने वाला विष्णु है। लेकिन ये सब हैं। ये जो लोक है इसको किसी ने नहीं बनाया, ना कोई इसका हरण कर सकता है, ना कोई इसको धारण करता है। लेकिन एक संसार जो मैं अपने भीतर बनाता हूं, उसका ब्रह्मा, उसका विष्णु, उसका महेश मैं ही हूं। मैं ही अपने उस कर्मों की सृष्टि का विधाता हूं, मैं ही अपने उस कर्मों की सृष्टि को नष्ट भी कर सकता हूं, मैं ही अपने उस कर्मों से बनाई हुई सृष्टि को मेंटेन करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। तो ये लोक जो दिखाई पड़ता है वो तो 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, और इस लोक में मैंने जो एक संरचना कर रखी अपने संसार की, वो उसका कर्ता भोक्ता स्वामी मैं जरूर। लेकिन इस लोक का तो कोई कर्ता भोक्ता और स्वामी नहीं है। ये तो शाश्वत है, 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है, और लोक पुरुष संठान, और ये कैसा आकार वाला है। इसका विचार करने से क्या होगा भैया? ऐसा विचार करने से अहंकार टूटता है, अहम बुद्धि चली जाती है। मैं तो जरा जरा सा कोई काम करके और फूला नहीं समाता हूं, और ये विचार करता हूं कि 6 द्रव्यों से मिलकर के ये लोक बना हुआ है, तो लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं। वो तो ऐसा ही है जैसे कि बैलगाड़ी के नीचे थोड़ी सी धूप हती सो एक बकरी जाकर उसके नीचे और खड़ी हो गई। फिर बैलगाड़ी चली तो उसने देखा कि ये धूप तो आगे छाया आगे बढ़ती जा रही, सो वो छाया छाया में उसके नीचे चलती जाए। थोड़ी देर बाद बकरी सोचने लगी कि अरे हमें आज मालूम पड़ी कि जब पूरी बैलगाड़ी हमारे ऊपर चल रही। अब बताओ आप, अब उस बकरी की गैर बुद्धिमानी पे हंसी आती है, और अपन अपनी गैर बुद्धिमानी पर अपने को रोना आना चाहिए। कह रही हम तो जो है जरा जरा सा काम करके उसके कर्ता बन जाते हैं, जबकि मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये 6 द्रव्यों से मिला हुआ लोक किसने बनाया है? यहां जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य जो है वो अपने स्वरूप के अनुरूप परिणमन करते रहते हैं। 2 ही द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, जिनके संयोग से और बाकी सब संसार निर्मित हुआ, वे अशुद्ध अवस्था में हैं। बाकी 4 द्रव्य तो शुद्ध हैं यहां इस लोक में, और पुरुषाकार है लोक। ये बड़ी विशेष बात, जैसे कि मेरा आकार है, कोई व्यक्ति अपने कमर पर हाथ रख के दोनों पैर फैला के खड़ा हो जाए, ऐसे ही 3 लोक की संरचना है। इसके मायने क्या है? पहली चीज तो ये 3 लोक 6 द्रव्यों से मिलके बना है, इसकी रचना किसी ने नहीं की है, ये शाश्वत है। गीता में कभी आप पढ़िएगा तो ना मुझे वो देखिए झट से विस्मृत हो गया, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति विभु स्वभावस्तु प्रवर्तते। जब श्री कृष्ण को पूछते हैं कि क्या आपने इसकी संरचना की है, तो कहते कि ना मैं इसका करता हूं, ना ये मेरा कर्म है, ये लोक तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये लोक तो अपने आप ही। हां वो जो संसार में अपने अंदर निर्मित करता हूं उसका कर्ता मैं हूं, पर इस सृष्टि का कर्ता तो मैं नहीं। तो इससे मुझे अहंकार मेरा टूटता है। और दूसरी बात, जब मैं विचार करता हूं कि इसका आकार कैसा है, तो आकार तो मेरे ही समान आकार है। इसका मतलब है सारा संसार मेरे ही भीतर है और कहीं बाहर नहीं। बाहर मुझे वैसे ही दिखता है जैसा मेरे भीतर है। ये बाहर का संसार मेरा ही प्रोजेक्शन है, मेरा ही एक प्रतिरूप है, मेरे ही द्वारा निर्मित किया हुआ है ये बाहर का। जैसा मैं देखता हूं, अपन कहते ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो पुरुषाकार है, वो मेरे भीतर ही है, 6 द्रव्य मेरे भीतर हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी सुई की नोक भी जहां टिके वहां पर भी छहों द्रव्य विद्यमान हैं और वे हमेशा से हैं, शाश्वत हैं। मुझे क्या शिक्षा लेनी चाहिए इस लोक के आकार की और इस लोक के बनावट की? चर्चा करने से मुझे क्या होने वाला, कोई आध्यात्मिक लाभ होने वाला इस विचार से? यही लाभ है कि मेरी अहम बुद्धि और ममकार बुद्धि, ये सब मेरा है, मैंने किया है, ऐसा टूट जाता है। और इतने ही नहीं, सब तरफ जो है मुझे, फिर जब मेरे अंदर सारा लोक है, सबके अंदर है, तब फिर मुझे सबके प्रति मेरे मन में, हृदय में स्थान बनने लगता है। अभी तो मैं अपने घर में किसी को जगह देने से इनकार कर देता हूं, फिर तो अगर ऐसी लोक भावना हमारे भीतर जागृत हो जाए तो ये लोक तो हृदय के समान है। जैसे इस लोक में छहों द्रव्यों को रहने का स्थान मिला हुआ है, छहों द्रव्यों से मिलकर ऐसे ही मेरे हृदय में भी सबके लिए स्थान होना चाहिए। प्राणी मात्र के लिए इस लोक में स्थान हो, अगर मिलता है तो मेरे हृदय में भी उसे स्थान मिलना चाहिए। जिसके हृदय में प्राणी मात्र के लिए स्थान है, उसी को तो अपन तीर्थंकर कहते हैं भैया, और कोई बड़ी बात है क्या? उसी को तो भगवान मानते हैं, जिन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से और तीर्थंकर प्रकृति बांधी और फिर तीर्थंकर बन के प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर उनके ज्ञान में सारा चराचर लोक झलक जाता है, उनके भीतर समा गया है। उससे हम क्या शिक्षा लें इस लोक भावना से? यही कि ऐसा ही मैं इस संसार में रहूं कि सबको मेरे हृदय में स्थान देऊं। जो व्यक्ति अपने हृदय में सबको स्थान देता है, उसका स्थान सबके हृदय में अपने आप बन जाता है। लेकिन इस लोक भावना के चलते और हम अपने बड़े स्वार्थी होकर के जी रहे हैं इस संसार में, हम निस्वार्थ होकर के जीना शुरू करेंगे अगर हम सही लोक भावना भाते हैं तो। सारे लोक का कल्याण हो, ये भी लोक भावना है, और इस लोक को मैंने नहीं बनाया है, अपने आप स्वरचित है। इससे मेरे अहंकार को तोड़ने में सहायक ये लोक भावना है। अब ऐसा हम विचार किया करेंगे जब कभी खाली बैठेंगे, ऐसा मन बना लो भैया कि जब कभी बैठेंगे तो विचार करेंगे कि देखो तो मैं तो जरा जरा सी चीजों में और अपने को कर्ता मान के बैठता हूं, ये पूरा लोक तो कैसे निर्मित है? और छहों द्रव्य रह जाते हैं, कभी भी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ने ये नहीं कहा कि आप यहां से हटो। छहों द्रव्य एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोगी बन के रहते हैं, और हम यहां पर एक दूसरे के सहयोगी बन के नहीं रह पा रहे हैं इस लोक में। यही तो हमारा अहंकार है, यही तो हमारा राग द्वेष है। हमें तो समता रखनी चाहिए, इस लोक भावना से हमारे भीतर समता भाव आना चाहिए, सबके लिए हृदय में स्थान मिले ऐसी भावना आनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊं और अपनी बात पूरी हो जाएगी कि कैसे जो है हम इस लोक का विचार करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। देखो तो लोक का विचार कर रहे हैं और जीवन हमारा अच्छा बन रहा है। कैसे बन रहा हमारा जीवन अच्छा? क्योंकि हम सबके प्रति प्रेम से भर उठते हैं जब हम लोक का विचार करते हैं, सृष्टि का विचार करते हैं। सारी सृष्टि हमें अपने भीतर नजर आने लगती है। लोग कल्पना करते हैं कि जब अर्जुन के सामने मोह जाग गया था, युद्ध होने को सम्मुख था और मोह जाग गया, अपने ही पितामह, इन सब अपने ही भाइयों को मुझे मारना पड़ेगा? नहीं, रख दिया था धनुष बाण। तब कहते कि श्री कृष्ण जी ने बहुत बड़ा रूप दिखाया था, तीनों लोक उसके भीतर समाए थे। वो और कुछ नहीं है, वो लोक भावना है। विचार करो अर्जुन, इस समय लोक भावना का विचार करो। सारा लोक तुम्हारे भीतर है, यहां जन्म मरण निरंतर जीव अपनी अज्ञानता से करता है, तुम क्या किसी को जन्म मरण करोगे? ये क्या चीज है? ये लोक भावना हमें सारी सृष्टि के बीच ठीक ढंग से रहना सिखाता, सह अस्तित्व की भावना और सहयोग की भावना से जीना सिखाता। उसके लिए उदाहरण बताता हूं। एक पिता के दो बेटे थे और पिता के मरने का समय आ गया, तो दोनों बेटों को बुला के कहा कि मेरा तो समय निकट है और मैं तो जाऊंगा, और जितनी संपत्ति है मैंने तुम सबको सौंप दी है, तो भैया अब ऐसा करना कि सारे सारे देश में अपने लिए कोठियां बनवा लेना इस संपत्ति से। उन्होंने कहा बहुत अच्छा पिताजी, आपकी बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। और पिताजी नहीं रहे, 13 दिन पूरे हुए और दोनों भाई बैठे और कहा कि बड़े भैया आप बनवाना शुरू करो कोठियां। बड़े भैया ने कहा ठीक है मैं शुरू करता हूं, तुम भी हो सके तो तुम भी एक तरफ से शुरू करो कहीं से, सारे देश में बनवानी है, पिता की आज्ञा है, पैसा जितना लगे सो लगने दो। और बड़े भाई ने कोठियां बनवाना शुरू की, छोटे भाई ने भी कोठियां बनवाना शुरू की। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भैया पैसा तो सब खत्म हो गया और कोठियां तो 10-20 जगह बन पाई, तुमने कुछ काम किया, कितनी बन गई तुम्हारी? कहती सब जगह बन गई। अरे सब जगह बन गई तो डबल डबल बन गई, जहां हमने बनवाई तुम्हें उतने भी? कहले हम ये नहीं कह सकते हमने भी बनवाई, मगर हमारे हिसाब से तो सब जगह बन गई, बहुत जल्दी बन गई, देखेंगे हम। बड़े भाई ने कहा हमारी तो 10-20 बन पाई कोठियां, तुमने कैसे बनवा ली सब जगह? अब कैसे बताएं कि कैसे बनवा ली कोठियां और आपने कैसे बनवाई है, पता कैसे लगे? चलो भैया अपन चलते हैं कोठी देखने के लिए, जहां आपने बनवाई है वहीं चलते हैं पहले। तो पहुंचते हैं, ट्रेन से नीचे उतरते हैं, छोटे भैया के साथ बड़े भैया हैं, लेकिन बड़े भैया को तो सिर्फ एक ही व्यक्ति आया है जहां कोठी बनवाई थी उसका नौकर, वो भर आता है। लेकिन छोटे भैया के स्टेशन पर उतरते ही 50 लोग खड़े हैं, अरे भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, अब की बार तो हमारे यहाँ रुकना भैया जी आप, अब की बार तो हमारे यहाँ रुकना, हम और कहीं नहीं जाने देंगे, और जितने दिन रुकना हो उतने दिन, और आपके बड़े भैया भी आए हैं वो भी हमारे यहीं रुकेंगे। बड़ी मुश्किल में पड़ गए वो, बड़े भैया सोच में पड़ गए कि मैंने भी यहाँ कोठी बनवाई है और वो नौकर भर आया है लेने के लिए, और इसने ये क्या मामला कर रखा है कि इतने लोग खड़े हैं कि वहां नहीं उसमें रुकना, उस वाली कोठी में रुकना, इस वाली कोठी में, भैया कितनी बनवाई तुमने, सब पैसा बेकार ना खराब करो। बड़े भैया को ऐसा लग रहा है, लेकिन जब जाके देखते हैं तो पता लगता है कि नहीं, कोठी तो जो उसमें रहता है उसकी है, लेकिन उस कोठी में छोटे भैया के लिए पूरी जगह है। पिताजी क्या कह के गए थे ये शायद छोटे बेटे ने ठीक से समझा, ईंट और चूने से मिलकर के कोठी तो बहुत मुश्किल है, कहां तक बनवाओगे, लेकिन सबके हृदय में थोड़ी थोड़ी जगह पाने के लिए अगर प्रयास करोगे तो सब जगह, जहां जाओगे वहां पर लोग कहेंगे कि हमारे पास आकर के रुक जाओ भैया, हमें भी अपना जीवन ऐसा ही बनाना है, जहां भी रहें वहां पर जो है ऐसे रहें जैसे कि पूरा भरा हुआ गिलास था दूध का और अब और कुछ उसमें नहीं भरा जा सकता था, तो क्या किया फिर, अब हमें तो उसी में अपनी चीज भी रखनी है तो कैसे करेंगे, सारा लोक ठसाठस भरा हुआ है ऐसा जैसे दूध का गिलास, तो बुद्धिमानी किसमें है कि थोड़ी सी शक्कर घोल दो और बाजू में एक फूल रख दो, मीठा हो जाए और सुगंधित हो जाए, उसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, वॉल्यूम उतना ही रहता है। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन बन जाए कि कहीं भी चले जाएं वहां किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं, बल्कि जो है मीठापन और सुगंध आ जावे। क्या ऐसा जीवन नहीं जी सकते हैं अपन? लोक भावना जो है वो यही है कि आप कहीं भी इस लोक में जाएं आए विचरण करें, लेकिन जीवन ऐसा बने जिससे दूसरे को कोई तकलीफ ना हो, बल्कि हमारा और आसपास का सबका वातावरण बहुत निर्मल और पवित्र हो जाए, ऐसी लोक भावना हम रोज भावें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, अब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां, शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, चाहो द्रव्य जान वेखो बंध विधवान वेखो स्वपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है, जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख वे स्तार वेखो यही जिन वाणी है, नमोता ही जाते भये
अर्हन्तादि महः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग पिछले दिनों और शायद कई दिनों से एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि जो जीवन हमारा शेष बचा है उसे हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं। हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य से अपने जीवन की यात्रा शुरू करी है। सच्चे देवगुरु सानिध्य के सानिध्य में हमारी दृष्टि निर्मल होती है, ये हमने जाना है। हमारा ज्ञान निर्मल होता है, हमारे आचरण में निर्मलता आती है। लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य पा लेने के बाद भी जब तक हमारे विचारों में स्थिरता नहीं आती है तब तक हम उस सानिध्य का लाभ नहीं ले पाते हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य हमारे जीवन में स्थिरता लाने में सहयोगी तो बनता है, पर यदि हम पुरुषार्थ न करें स्वयं तो शायद वो उतना लाभकारी नहीं होता। साधन हो लेकिन उस साधन का सदुपयोग करके और अपने साध्य की प्राप्ति न की जाए तो वो साधन अपनी तरफ से हमारा कोई सहयोग नहीं करता। हम सबको कई कई बार सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिला है, वो एक साधन की तरह हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन उस साधन का सदुपयोग कर लेना और अपने आत्मस्वरूप रूपी साध्य को प्राप्त कर लेना, ये पुरुषार्थ तो हमारे आश्रित है। हमने पिछले दिनों इसलिए ये तय किया था कि हम अपने जीवन में अब विचारों की स्थिरता लाने के लिए कोई ना कोई प्रयास करेंगे, और वो प्रयास भी हमने शुरू किया है। विचारों की निरंतरता यदि बनी रहे तो फिर विचारों में स्थिरता आने लगती है। जैसे बुरे विचारों की निरंतरता हमारे भीतर बनी रहती है तो वे विचार इतने दृढ़ हो जाते हैं कि हम नहीं भी चाहते हैं तब भी वे विचार आ जाते हैं। हम सामायिक करते हैं, हम पूजा करते हैं और वे बुरे विचार हमारे सामने आने लगते हैं। क्यों? उनका संस्कार प्रबल है, वे बहुत स्थिर हो गए हमारे भीतर। ऐसे ही यदि हम अच्छे विचारों की निरंतरता बनाए रखेंगे तो वे अच्छे विचार हमारे जीवन में दृढ़ और स्थिर होकर के हमारे जीवन को परिवर्तित करने में सफल होंगे। ऐसा हमने पिछले दिनों विचार किया था। भैया, विचार तो मानो कि दूध की तरह हैं, अच्छे विचार भी दूध की तरह हैं, लेकिन दूध पतला हो या गाढ़ा हो या कितने ही सफेद हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। देखिएगा, दूध पतला हो, गाढ़ा हो, चाहे सफेद हो, बताइएगा क्या इससे दूध की महत्ता होती है कि दूध गाढ़ा है, दूध पतला है, या कि सफेद है बड़ा अच्छा है? नहीं, दूध की महत्ता इससे है कि अगर उसको जमाओ और मथो तो उसमें से नवनीत निकलता है, और अगर गर्म करो तो मलाई निकलती है। अगर मलाई निकलती है और नवनीत उसमें से निकलता है तो दूध अच्छा है, और नहीं तो कितने भी सफेद रहा हो, कितने ही गाढ़ा रहा हो, और या कि कैसे भी रहा हो, उसका महत्व नहीं। हमारे पास श्रेष्ठ विचार है, लेकिन वे श्रेष्ठ विचार मथे जाने पर अगर हमें अपने जीवन के कल्याण का नवनीत दे पाते हैं, कुछ सार उनका हमें मिलता है, वीतरागता का नवनीत यदि उन विचारों से मिलता है, तो ही वे विचार हमारे भले हैं। इसलिए हम निरंतर इस विचार की प्रक्रिया को बहुत सजग होकर, सावधान होकर के कर रहे हैं। ये प्रक्रिया ऐसी है मानो जैसे कि गाय जल्दी जल्दी सब खा लेती है, घास जितनी मिलती है रखी जाती है उसके साथ पास में, और रख करके फिर उसके बाद यहां रखी रहती। वो उसके गले में ऐसी व्यवस्था है कि वो उस खाई हुई घास को और अंदर रख लेती है, और फिर धीरे धीरे करके जब खाली बैठती है तो निकाल निकाल करके उसको फिर रोमंथन करती है। वो रोमंथन कहलाता है। विचार की निरंतर प्रक्रिया को जैसे अपन अनुप्रेक्षा कहते हैं, ऐसे ही एक नया शब्द है रोमंथन, गाय का रोंथना जैसे, उसी से बना है ये रोमंथन। जब थोड़ा फुर्सत मिली संसार के कामों से, तब फिर जो है अपने वो जो यहां से हम सुन के जाते हैं विचार, एक साथ घंटे भर में ढेर सारे, या स्वाध्याय करते हैं तो ढेर सारे विचार हमारे अंदर सुन लेते हैं, हम रख लेते हैं, और फिर अब उनको क्या करना, इन विचारों को रख रख के क्या करना। हां, खाली बैठ करके जब इनका रो मंथन, इनको बार बार जो है चिंतन में लाना, बार बार इनको दोहराना, तब जाकर के ये विचार जैसे नवनीत निकलता है दही के मथने से, ऐसे ही इनमें से हमारे जीवन के कल्याण के लिए कोई नवनीत निकलेगा। ऐसी ये अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया हम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं, और रोज उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ के और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पुराना नहीं भूलते हम। ऐसी ही ये प्रक्रिया है, आगे पार्ट पीछे सपाट वाली प्रक्रिया नहीं है ये। यहां तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कोई एक प्रतिमा ले और फिर दूसरी प्रतिमा की तैयारी करे, तो ऐसा नहीं है कि पहली प्रतिमा में जो जो किया था वो सब छोड़ दो, अब दूसरी प्रतिमा ले ली सो उसका करो। कहते नहीं, पहली का तो पूरा पालन करना ही पड़ेगा, दूसरी भी और ग्यारहवीं भी ले लोगे तो 10 प्रतिमाएं पहले वाली भी पालन करनी पड़ेंगी। ठीक ऐसे ही ये प्रक्रिया है। अगर कल हमने संसार की क्षणभंगुरता पर विचार करके और जो आत्मा की शाश्वतता है उसका विचार किया था, और अगले दिन यदि हम संसार में कौन शरण है मेरे लिए और कौन शरण नहीं है इस पर विचार करते हैं, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये संसार क्षणभंगुर है। और जब हम तीसरे दिन संसार में अपनी अज्ञानता से मिलने वाले दुखों का विचार करते हैं, तब भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही संसार है जिसमें कहीं कोई मुझे शरण नहीं मिली, ये वही संसार है जिसमें जिस चीज के कांटेक्ट में आता हूं वो कुछ दिन मेरे साथ रह के और फिर नष्ट हो जाती है। और जब जब भी मैं इस बात का विचार करूं कि मैं यहां अपने सुख दुख को भोगने के लिए कितना अकेला हूं, ये मेरी स्वाधीनता है, अच्छा ही हुआ कि कोई मुझे जबरदस्ती दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे जबरदस्ती सुखी नहीं कर सकता, मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूं जो चाबी भर के मुझे चलाए। मेरी स्वाधीनता का मुझे बोध हो गया है, मेरे एकत्व का मुझे अनुभव होने लगा है। जब अपने एकत्व का अनुभव हो तब भी ये ध्यान में रहे कि ये संसार जो दिखाई पड़ता है, मैं चाहूं तो अपने अज्ञान से फिर से इसको फैला सकता हूं। यहां शरण खोजने लगूं अगर तो फिर मेरी भूल हो जाएगी, यहां की चीजों को अगर शाश्वत मानने लगूं तो फिर मेरी भूल हो जाएगी, ऐसी सावधानी। और जब जब मैं अपने से बाहर जो लोग मेरे संपर्क में हैं, जिनको मैं अपना मानता हूं और हैं भी मेरे अपने, मेरी मदद करते हैं, भले लोग हैं, लेकिन ये लोग भी एक निश्चित सीमा तक ही मेरे हैं, उसके बाद ये मेरे नहीं हैं। सब अपने अपने जीवन को अपनी तरह से जीते हैं। मैं अपने जीवन को, मेरा ज्ञान दर्शन का अनंत चतुष्टय अलग है और ये पर पदार्थ है इनका अलग है। पर में तो जीव भी पर है और ये शरीर भी पर है। ऐसे अपने से पृथक वस्तुओं का विचार करके तब भी हम नहीं भूलें कि हम क्या हैं, और जब हम अपने शरीर का विचार करें, उसकी अपवित्रता का विचार करें, तब भी ध्यान रहे कि क्षण भंगुरता इस संसार की हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे पीछे पीछे की सारी अनुप्रेक्षाएं जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो याद में बनी रहनी चाहिए। जहां जैसा अवसर आता है वहां वैसा हमारे भीतर विचार आ जाना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा था कि किसी अपने प्रियजन से जब वियोग होता है तब कैसा मन में विचार आता कि अब पता नहीं कब क्या होगा। ये एक व्यक्ति था जो कि मेरे सहयोग के लिए था, अब नहीं है, तब फिर क्या विचार आना चाहिए। फिर जिस जिसको अपना माना वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल। मैं अगर व्याकुल होऊंगा तो एक नई व्याकुलता मेरे भीतर और उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा विचार आना चाहिए। जहां जहां मैं शरण खोजने की कोशिश करूं वहां ऐसा विचार आना चाहिए कि नहीं, यहां शरण नहीं खोजी जा सकती। शरण मिल तो जाती है लेकिन वो मेरे ही अपने परिणामों के ऊपर आधारित है, मेरे अपने स्वभाव की शरण मुझे लेनी चाहिए। और फिर हमने ये भी विचार किया है पिछले दिनों कि भैया इस संसार में तो हम अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, कहां कहीं शांत बैठ पाते हैं। शरीर शांत बैठ जाता है, वाणी शांत हो जाती है, लेकिन मन तो निरंतर यात्रा करता रहता है। तो मन वचन काय की जितनी क्रियाएं हैं उनके द्वारा निरंतर मेरे संस्कार, नए नए शुभ और अशुभ संस्कार पड़ते रहते हैं, उन्हीं को हम पुण्य और पाप कर्म कहते हैं। वे सब मेरे भीतर आते रहते हैं और संचित होते रहते हैं, और इतने ही नहीं, जब वे अपना फल देते हैं तो मुझे मुश्किल में डाल देते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन आने वाले कर्मों के द्वार पर कोई ना कोई पहरा बिठा देना चाहिए, और वो पहरा किस बात का हो सकता है। महाराज ने जैसे अभी अपने जीवन के बारे में और बहुत सारी, मुझे भी इतनी बात जो उन्होंने सुनाई नहीं मालूम थी, बहुत थोड़ी सी बात की मालूम थी। मुझे बहुत मुश्किल लगती है जब मैं सुनता हूं कि किसी ने अपने माता पिता के बिना अपना जीवन इतना ऊंचा बना लिया। भैया बहुत कठिन है, जिसने उस वियोग के दुख को सहा है वो समझता है कि माता पिता, उनको नहीं समझ में आता जिनको जिंदगी भर माता पिता मिले हों। उनसे पूछो जिनके की बचपन से माता पिता नहीं होते और वे अपने जीवन को कैसे बनाते। ये ठीक है कि संसार में जीव अपना पुण्य पाप लेके आता है, सो उसके अनुसार वो आगे बढ़ता चला जाता है, पर कठिन मामला है। तब उस समय क्या विचार आना चाहिए, यही विचार आना चाहिए। सच्चा ज्ञान तो यही है। भले ही महाराज कह रहे कि हम चौथी पूरी नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए भैया, भैया क्या काम में आने वाली डिग्री और क्या काम में आने वाला आपका भौतिक ज्ञान। ज्ञान तो वो है कि सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चार्य त्रयी, कर्मों के आने के द्वार खो जो रोक सके सो ज्ञान सच्चा है, बाकी सब ज्ञान झूठा है जिससे कर्मों का आगमन होता। ऐसा विचार हमारे भीतर आना चाहिए कि अरे मेरे अपने कर्मों के आने का द्वार तो मैंने रोका नहीं और बड़ा ज्ञानी बन के बैठा हुआ हूं मैं और बड़ी बातें करता हूं। मेरे अंदर गुप्ती मन वचन काय की एकाग्रता का कोई उपाय मैंने किया, मैंने अपनी क्रियाओं पर कोई सावधानी रख करके समिति का पालन किया कि नहीं किया है, मैंने उस समिति के पालन करने के लिए 10 धर्मों का कभी विचार किया, 22 परिचय सहे 12 भावनाएं भाई हैं, मैंने कोई चारित्र अपने जीवन में अंगीकार करा है कि नहीं करा, अगर इसमें से कुछ भी हमारे पास नहीं है तो कोई हमारे आने वाले कर्मों को रोकने का उपाय ही नहीं है। अपने आने वाले कर्मों को रोक करके और ऐसी संवर भावना भाना चाहिए और जो कर्म अज्ञानता में हमारे भीतर संचित हो गए उनको निकालने का उपाय भी हमें करना चाहिए, अपनी इच्छाओं का निरोध करके विभिन्न प्रकार के 12 तप करके करना चाहिए और जिस इस लोक में जो 6 द्रव्यों से मिलके बना हुआ है उसमें हम बैठे हुए हैं और अपने को कर्ता धर्ता मान के बैठ जाते हैं, थोड़ा सा कर लेते तो फूले नहीं समाते कि मैंने किया है, मैंने ऐसी गृहस्थी बनाई, मैंने ऐसा जो है इतना मकान बनाया, मैंने ऐसी दुकान बनाई, ऐसा अहंकार कर लेते हैं। उस अहंकार को अपने को तोड़ना चाहिए ऐसा विचार करके कि इस लोक को किसने बनाया बताओ तो, ये तो 6 द्रव्यों से मिलके अनादि काल से बना है, अनंत काल तक रहेगा और इसमें जीव जो है अपनी अज्ञानता से भटकता रहता है क्योंकि समता भाव नहीं रखता, हर्ष और विषाद करता, अहंकार और ममकार कर लेता, इसलिए ऐसा विचार अपन ने पिछले दिनों किया था। मैं तो सोचता हूं कि ये सब बातें अगर आ गई तब फिर जो है आगे का मामला बहुत स्पष्ट हो जाता है, ऐसा अगर ज्ञान है तो वही ज्ञान समीचीन ज्ञान है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना ही दुर्लभ है और सब चीजें तो सब सुलभ। क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है एक जगह पर, गुरु कृपा और हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा हूं कि बात तो यही है, हमें बहुत सारी चीजें जो दुर्लभ हैं वे भी हासिल हो जाती हैं। एक इंद्री से त्रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है सो वो भी हमें प्राप्त हो गई, वो भी अब ज्यादा दुर्लभ नहीं रही। 2 इंद्री से 3 इंद्री होना दुर्लभ है, 3 इंद्री से 4 इंद्री और संगी पंचेंद्री होना तो महान दुर्लभ है कहते, वो भी हमें दुर्लभ होने पर भी सुलभ हो सकती है। और इतने नहीं, मनुष्य होना भी दुर्लभ है वो भी हमने सुलभ बना लिया है, वो भी हमें प्राप्त हो गया है। मनुष्य होकर के सुकुल पे प्राप्त हो जाना और जिनवाणी सुनना, सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिलना, ये क्रम क्रम से भारी दुर्लभ है लेकिन वो भी सुलभ हो सकता है और हो गया। ये सारी दुर्लभताएं कितने आसानी से हमें प्राप्त हो गई हैं, कैसे हमने इनको सुलभ बना लिया है और उसके बाद इसको हम सुलभता से अगर गंवा रहे हैं तो फिर इनकी दुर्लभता क्या है। दुर्लभ तो वो है जिससे कि हम अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेवें। जिनवाणी सुनना दुर्लभ और जिनवाणी सुनकर के देश व्रत होना दुर्लभ, अनुव्रतों को धारण कर लेना दुर्लभ और फिर कहते कि महाव्रतों को धारण कर लेना दुर्लभ है। रत्नत्रय दुर्लभ है, रत्नत्रय का धारण दीक्षा का धरना बहुत दुर्लभताएं हैं, ये क्रम क्रम से बढ़ती चली जाती हैं। कहते ये भी सुलभ हो जावे, अगर रत्नत्रय भी प्राप्त हो जावे तब भी उस रत्नत्रय को प्राप्त करके दुर्लभ है शुद्ध भाव करना, और दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर इस भाव में फिर वापिस आने का काम नहीं है। वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप बोधि है, वास्तव में बोधि किसे कहते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति का नाम बोधि है, वो बोधि बहुत दुर्लभ है। आप तो कह रहे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय प्राप्त करना कोई ज्यादा दुर्लभ नहीं है, उसके बाद और दुर्लभता शेष है। तो कहते कि रत्नत्रय इसलिए दुर्लभ है क्योंकि अगर वो रत्नत्रय केवल ज्ञान प्राप्त करा देवे वास्तव में तो वो उसकी दुर्लभता है। रत्नत्रय प्राप्त करने के बाद भी जो है हम सो जावें, तो कहते हैं कि नहीं, वो दुर्लभ नहीं था, दुर्लभ तो उसका सुफल है। रत्नत्रय का सुफल क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति होना रत्नत्रय का सुफल है, और वही दुर्लभ है। रत्नत्रय तो दुर्लभ है ही, बहुत भाग्यवान होगा जिसको कि रत्नत्रय की प्राप्ति हो जावे, लेकिन उस रत्नत्रय के द्वारा जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जावे वो तो दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन। ऐसी निरंतर दुर्लभताओं का विचार हम करते हैं तो इससे क्या होता है, जरा विचार तो करो इस बात का। ऐसा तो हम सुनते आए हैं, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथारथ ज्ञान। अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत वीरियां पद पे, सम्यक ज्ञान लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं इन चीजों का। सामान्य सी बात कहने की है कि धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर, जो दुर्लभ मालूम पड़ते हैं वे भी हमें सुलभ हो सकते हैं, लेकिन वो जो वास्तव में दुर्लभ है उसको दुर्लभ समझने वाला ज्ञान प्राप्त होना बहुत दुर्लभ। हां, इन सबको दुर्लभ मानने वाले ज्ञानी बहुत हैं आज। भैया पैसा बड़ी मुश्किल में आउट है, कई जने हैं जो अनबे उनको 5 मिनट फुर्सत नहीं है मंदिर जावे की और महाराज को हार देवे की, उनकी दुकान ही में भी लगे। क्यों? उनको दुर्लभता वही मालूम पड़ रही है कि यही तो दुर्लभ है धन। अभी उनको ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि इससे भी ज्यादा कोई दुर्लभ है। मुझे रत्नत्रय दुर्लभ है ऐसा ज्ञान भी कहां से प्राप्त होगा, यह भी बहुत दुर्लभ है। वो यही कहना चाह रहे कि ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जावे कि ये सब चीजें जो संसारी जीवों को दुर्लभ मालूम पड़ती वे अपन को सुलभ लगने लगे, और जो आज तक प्राप्त नहीं हुई है केवल ज्ञान वो अपने को दुर्लभ मालूम पड़ने लगे, ऐसा ज्ञान दुर्लभ। ये कहना चाह रहे केवल ज्ञान फिर दुर्लभ नहीं है, ऐसा ज्ञान दुर्लभ है जो केवल ज्ञान को दुर्लभ मानता हो। अबे तो हमारा ज्ञान पैसा को दुर्लभ मानत, मकान को दुर्लभ मानत। यथार्थ ज्ञान कौन सा है? जो रत्नत्रय को दुर्लभ मानता हो, जो बोधि को दुर्लभ मानता हो, वो यथार्थ। ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना भी दुर्लभ है, बताओ आप। उस यथार्थ ज्ञान के फलस्वरूप जो प्राप्त होगा वो तो दुर्लभ है ही, लेकिन ऐसा ज्ञान भी हमारे भीतर हो जावे और हमें अपनी जो वास्तविक पर्याय है, जो सिद्ध अवस्था है, वो दुर्लभ मालूम पड़ने लगे, तब समझना कि हां बोधि दुर्लभ अब हमारे भीतर भावना आ गई। अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत बिरियां पर, अभव्य जीव की अपेक्षा से लिखा छेढाला में दौलत राम जी ने कि इस जीव ने बड़ा पुरुषार्थ करके, मुनि बन करके, महाव्रत बाहर से अंगीकार करके अंतिम ग्रैवीय तक की सीमा को प्राप्त कर लिया, वहां तक जाके उत्पन्न हो गया, लेकिन उसे अभी आत्मा की दुर्लभता का बोध नहीं हुआ। वे साधु धन्य है सो दुर्लभ निज में मुनि साधो। इसका ये अर्थ नहीं है इसमें कि कच्छू नहीं है मुनि बने में, जो अर्थ नहीं लिखो इमें, इमें जो लिखो है कि वे साधु दुर्लभ हैं जो संसार के भौतिक सुखों को सुलभ मान करके और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना ही दुर्लभ मानते हैं, ऐसे साधु मिलना दुर्लभ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखो तो आप। लेकिन अपने मन में अभी जरा विचार करना कि किस चीज को दुर्लभ मानते। हम तो यही समझते भैया कि जो उनको धीरे धीरे खर्चा करो जाए बस दुर्लभ कहाउत है, जा बताओ नहीं कहा बहुत समर समर के बिल्कुल बड़े जतन से, जैसे कोनो छोटो सो लड़का और अपनी डबुलिया में वो पैसा जोड़ ले वे और 100 रुपया हो जाए कदाचित, उससे पूछो कि भैया क्या करोगे, कहते अबे सोचा नहीं है सोचेंगे। अरे अगर पिताजी 100 रुपए का नोट दे दें और फिर पूछो कि का कर हो, सुफौरन कह दे चॉकलेट लिया है, सबरी पूरी हो पूरे की लिया है चॉकलेट, और अपने हाथ से जो एक एक पैसा जोड़ा है उस 100 रुपए के बारे में पूछते हैं कि क्या करोगे, तो कहते अभी सोचा नहीं है, सोचेंगे कैसे खर्चा करना। और ऐसा क्या अपने जीवन के बारे में लगता है कि जी जितनी सांसें हमें मिली हैं वे समर समर के और खर्चा करनी, सोचेंगे कैसे सांस खर्चा करनी है, खराब विचार करके खर्चा करनी के अच्छे विचारों में खर्चा करनी। एक एक सांस खर्चा कर रहे हैं हम, लेकिन संभल के नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि अपन को इसकी दुर्लभता का अभी बोध नहीं। अबे हमें दूसरी चीजें, अपनो मकान बनावे में कितनी सांसें चली गई, दुकान चलावे में और चार ठीकरा कमावे में कितनी सांसें चली गई, वे सांसें दुर्लभ नहीं है। अभी चार ठीकरा जो उन कमा लो, वो मकान जो उन बना लो, वो दुर्लभ लग रहा हो कि सांसें दुर्लभ लग रही। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता तो सब कह दे, जो उनसे पूछो वो कहते कि मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है। मनो जितने आसानी से खर्चा कर रहे उसे तो नहीं लग रही कि दुर्लभ मान रहे, के जरूर रहे। जो जिस चीज को जितने सावधानी से खर्च करे उससे मालूम पड़ता है कि वो उसको दुर्लभ मानता है कि भैया इतनी आसानी से नो हमने एक एक पैसा जोड़ के यहां बनाओ है, वो ही जानता है। हम जब बोधि दुर्लभ का विचार करें तो हमारे भीतर ऐसे परिणामों में ये बात आनी चाहिए, ऐसा ज्ञान हमारे भीतर आना चाहिए कि भैया ये जब चीजें जिनको मैं दुर्लभ मानता हूं वे सब विचार कर रहे थे कि क्या चीज हम दुर्लभ मानते हैं, यह बहुत स्पष्ट हमारे भीतर होना चाहिए। हम संसार की चीजों को बड़ी मेहनत से हासिल करते हैं, उनको दुर्लभ मान करके हासिल करते हैं, लेकिन वे ज्यादा दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो मेरे लिए आत्मज्ञान है। आज हम देखते हैं भौतिक ज्ञान हासिल करने के लिए इतना कॉम्पिटिशन है, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं लोग, इसमें सिलेक्शन हो जाए महाराज आशीर्वाद दे दो, इसमें सिलेक्शन हो जाए, मुझे ये डिग्री मिल जाए, मुझे वो डिग्री मिल जाए, मैं इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहा हूं, इतनी दुर्लभ है कि चार ही लोगों को मिलेगी या 10 लोगों को मिलेगी। हम इन सब बातों को बहुत दुर्लभ मानते हैं, ये भी लेकिन हमें सुलभ हो जाती है। सबसे अधिक दुर्लभ क्या है, अपने आत्मा का ज्ञान दुर्लभ है। और आत्मज्ञान कौन सा, अकेले पोथी में से पढ़ने वाला आत्मज्ञान नहीं, सच्चा आत्मज्ञान तो वो है जिससे कि काम क्रोध लोभ ये सब मिट जावें। कबीर दास कहते हैं काम क्रोध मद लोभ की जबलग घट में खान, कबीरा मूरख पंडिता दोनों एक समान। हां जब तक ये हमारे भीतर में है, कषायें हमारे भीतर में पड़ी हैं, पांचों पापों की प्रवृत्ति हमारे भीतर पड़ी हुई है, तब तक जो है मूरख होए चाहे पंडित होए दोनों एक ही समान है। वास्तव में तो वो है ज्ञानवान जो इन सब को जीत लेता है, आत्मज्ञानी ही इन सब को जीत सकता है। इसलिए सम्मज्ञान या कि आत्मज्ञान ही दुर्लभ है, और बाकी सब चीजें तो यहां इस संसार में किसी को कम ज्यादा और प्राप्त है ही, और अपने पुरुषार्थ से यहां पर जीव उन सब चीजों को हासिल कर लेता है। अपने आत्मज्ञान को हासिल करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक घटना सुनाता हूं, और मेरे ख्याल से बात इतनी ही पर्याप्त है। वैसे तो महाराज ने आज इतनी बढ़िया बात सुना दी है, ज्ञान तो सच्चा वही है जो कि रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए और हमें पुरुषार्थ हमारे भीतर जागृत कर देवे, वही ज्ञान सच्चा है। हम सब भी जो है उसी ज्ञान को प्राप्त करें जिससे हमें रत्नत्रय रूपी बोधि की प्राप्ति हो। ऐसा ज्ञान, मुझे एक घटना याद आती है, और ऐसा ज्ञान सब जीवों के प्रति जो दया रखता होगा उसी के अंदर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए वो घटना सुनाता हूं। वैसे तो और भी बहुत एक साथ कई घटनाएं याद आ गईं, पर समय के अनुसार तो दो मिनट में वही घटना हो सकती है। एक बार क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान हासिल करने के लिए किसी गुरु के पास जाता है कि मुझे ज्ञान कैसे हासिल हो, तो वो कहते हैं इस चीज का अध्ययन करो, साल भर तक तुम अध्ययन करो, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो वो साल भर तक गुरुजी के पास रह करके अध्ययन करता है और साल पूरी होने लगती है तो वो पूछता है कि क्या करना गुरुजी? कहते नहा धो के आओ फिर बताएंगे। तो जैसे ही जो है वो नहा धो करके लौट के आता है और उतने में एक मेहतर उसके ऊपर झाड़ू से थोड़ा कचड़ा उड़ा देता है। बड़े गुस्से में आ जाता वो कि क्या मचा रखा है, मैं इतना ज्ञानवान साल भर से अध्ययन कर रहा हूं और तेरी बिसात क्या है, मेरे ऊपर कचड़ा उछालता है। वापिस लौट के आता है, गुरुजी से पूछता कि अब और क्या करना? कहते साल भर और पढ़ो। अबे मतलब साल भर हो गई और कह रहे साल भर और पढ़ो अभी? वो और किसी ने नहीं, गुरुजी ने कहा था उस मेहतर से कि जरा धूल तोड़ा के देखना, पता लग जाएगा कितना ज्ञान है इनका। सो लग गया पता, गुरुजी को खबर मिल गई कि बड़े बौखलाए ये तो। तो कहने लगे साल भर और पढ़ो। साल भर और पढ़ा, साल भर पूरी हुई तो इनने कहा अब आगे बताओ। कहते नहा धो के आओ फिर बताए। फिर नहाने धोने गया तो एक और आगे तक की बात हो गई कि वो मेहतर जो है इनसे टक्कर खा करके आगे निकल गया। अब इन्होंने उसको घूर करके देखा, कहा तो कुछ नहीं लेकिन ऐसे घूर के देखा जैसे कि ये खाई जाएंगे उसको। ऐसे देखते हैं, संदेह देखते हैं कई लोगों को, बड़े बड़े ज्ञानवान ही लोग तक। अब तो बहुत ज्ञानवान लोगों से की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं समझिएगा आप, लेकिन देखो तो अपना ज्ञान। हम ये कह रहे हैं कि अपना ज्ञान तो देखो कितनी जल्दी जो है वो मुश्किल में डाल देता अपन को। तो थोड़ा धक्का उसने मार दिया तो कुछ मुंह से तो कुछ नहीं कहा लेकिन आंखें ऐसी दिखाई, खबर गुरुजी तक आ गई जी बाद में आ पाए। इनने कहा कि अब क्या करना? कहते और साल भर पढ़ो। अरे भाई अब तो धैर्य की सीमा होती है, फिर भी अब चूंकि अपना स्वार्थ था कि अब ज्ञान तो हासिल करना है, गुरुजी के पास दो साल हो गए हैं, चलो अब एक साल और कर लो, लेकिन इस एक साल के अध्ययन से कषायें अब और अधिक मंद हो गईं और तीन साल पूरे हुए तो गुरुजी ने फिर कहा कि नहा धो के आओ। और अब की बार जब नहा धो के वापिस लौटते थे तो उस मेहतर ने तो पूरा भरा भराया कचरे का छबला और इनके ऊपर से डाल दिया। लेकिन अब की बार पहले तो अकेली धूल उड़ी थी तो बौखला गए थे, दूसरी बार टक्कर लगी थी तब घूर के देखा था, आपकी बार तो पूरी टुकनिया कचरा की ऊपर से डाल दी, तब भी वहीं शांत खड़े रहे और उस मेहतर से कहा कि तेरा धन्यवाद, तेने मुझे एक बार और पवित्र होने के लिए अवसर दिया, मैं फिर से जाके स्नान करके आता हूं। और शांत भाव से पुनः स्नान करके गुरुजी के चरणों में आके माथा टेक दिया कि अब आगे क्या करना? कहते सब होगा, अब कछु नहीं करना, जो हम करन चाहते वो तुमने सब कर दिया, हम अकेले तुम्हें पोथी के ज्ञान से आत्मज्ञानी बनने वाले लोग बहुत हैं भैया, पोथी के ज्ञान वाले आत्मज्ञानी बहुत हैं, जिसने अपने कषायों को मंद कर लिया, जिसने अपने मिथ्यात भाव को दूर कर दिया है वो व्यक्ति ही सच्चा आत्मज्ञानी है, यही दुर्लभ है और सब चीजें तो बहुत सुलभ हैं, ऐसा विचार अपन को बार बार आना चाहिए, यही बोधि दुर्लभ भावना है। इसी भावना के साथ ये जो रत्नत्र रूप बोधि है वो बोधि हम सबको प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जिससे हमारे भीतर रत्नत्र और महाव्रत को और मुनि पने को प्राप्त करने की भावना तो उत्पन्न हो भैया, इतना ज्ञान तो सबके भीतर उत्पन्न होना ही चाहिए, इसी भावना के साथ बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुखदर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है, जब जग विषया में दाखिल निद्रा में सोता हो अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, दिन रात लुटाया करते वो शम शम की अविनश्वर मनिया, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, चाहो द्रव्य दान बंद वेद बानवे को सो पर पिछानवे को परम प्रमाणी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को ये जिन वाणी है, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ मंगल गान रवाकुले दिन ग्रहे मु